ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو تو جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اللہ اکبر. ہجرت کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، مکہ سے اب نکلنے کے دن قریب ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں سکھا رہے ہیں. مکہ میں اسلام کا پیغام پہنچانے کی سر توڑ کوشش کر لی. جن کے نصیب میں ہدایت تھی، جن کے دل سلامت تھے، انہوں نے قبول بھی کر لیا، بے لوس جان مال وقت سے مدد بھی کی. لیکن اب مکہ سے مدینہ آنا تھا، اور یاد رکھیے مکہ میں اسلام مغلوب تھا، مدینہ میں آ کر اب اقتدار چاہیے تھا، غلبہ چاہیے تھا، اسلام کا نفاذ لازمی تھا. ایک ہوتی اسلام کی تبلیغ اور ایک ہوتا اسلام کا نفاذ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور کارنامہ کیا کہ آپ نے اسلام کو نافذ کر کے دکھایا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا معجزہ کیا ہے کہ انہوں نے اس اسلام کو عملی طور پر دنیا کے اتنے ملکوں پہ نافذ کیا. آج بھی انسانیت اسی معجزے کی منتظر ہے، اسی کے رستے ہموار ہو رہے ہیں اسے ایک دعا کی صورت میں. کیونکہ دیکھیے غلبہ کب ہوتا ہے، آپ سوچیے نا، آپ 10 باتیں اپنے بچوں کو کہہ دیں، چلو بیٹا آج یہ کریں گے وہ کریں گے، آج پکوڑے نہیں بنیں گے، آج یوگا، سب جلدی سو جائیں گے. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کریں گے جس وقت، اس وقت مشکل ہوگا. تو نوٹ کیجئے، غلبے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ غیر مشروط اطاعت کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو سوال نہ پوچھیں مان جائیں. یہ نہیں کہ 30 راتوں سے 40 راتیں لگ گئیں طور پہ تو لوگ پیچھے سے بچڑا پوجنے لگ گئے. موسیٰ کو اچھے ساتھی نہیں ملے، نفس سلم کی کامیابی کی وجہ لکھ لی اس آیت میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو اچھے ساتھی مل گئے تھے. آج بھی اسلام کا پودا اسی سرزمین پہ لگے گا جہاں غیر مشروط اطاعت کرنے والے مسلمان ہوں گے، جو دین کے لیے قربانیاں دینے والے، جو خود کو نہیں دین کو بنانے والے. پھر اس میں مال چاہیے ہوتا ہے، اس میں ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس میں کمٹمنٹ کرنے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، انڈر کمٹ اوور ڈیلیور والے لوگ چاہیے. تھوڑا کمٹ کریں اس سے زیادہ کریں، کمٹ زیادہ کریں اور ڈیلیور کم کریں. ایسی جگہوں پہ کبھی اسلام نافذ نہیں ہوتا. تو صحابہ کی یہ خوبی یہاں بیان کی گئی، اسی لیے اگلی آیت سنیے، وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دو، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے. یہ کب آتا ہے؟ یہ مکہ فتح ہونے کی باتیں ادھر ابھی بیان کر دی، ابھی ہجرت ہونی ہے. کہا آپ کی ہجرت کا راستہ، اصل میں یہ روڈ ٹو ہجرا، یہ جو ہے یہ مکہ کی فتح کا راستہ بنے گا. کب حق آ کر پھیلتا ہے اور باطل دبتا ہے؟ جب آگے کا سوچنے والے لوگ ہوں، جو پہلے سے سوچ لیں کہ آگے کیا ہے. خواب دیکھنے والے، یعنی کہ بارش ہو رہی ہے تو چھتری ڈھونڈ رہے ہیں، مہمان آ گیا تو کیا پکائیں گے کیا کریں. ایٹیچیوڈ کے ساتھ دین کا کام کبھی نہیں ہوتا. ٹیلنٹ بھی چاہیے لیکن اندر کی اطاعت بھی چاہیے. جان دینے والے، جان بچانے والے نہیں. آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 10 سال تک، پہلے ابو بکر، پھر عمر، عثمان اور علی، 4 ادوار کے بعد دیکھیے 10 صدیاں گزر گئیں. کیوں دین کا پودا جمارا؟ ساتھی اچھے تھے. دعا کرے اللہ اچھے ساتھی دین کے نام پہ ہمیں دے دے. اچھے لوگوں کا ساتھ دنیا میں اسلام کو غالب کرتا ہے، اور کمزور لوگوں سے جو رہی سہی ساکھ ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آج امت مسلمہ کو ایک بہترین امت بنا دے. پھر قرآن کی بات، جہاں غلبے کی بات، جہاں اصلاح کی بات، جہاں کریکٹر بلڈنگ کی بات، اس کے بعد قرآن کی بات. کیونکہ قرآن ہی تزکیہ کرتا ہے، قرآن دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم اس قرآن کے نازل کرنے کے سلسلے میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں، جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے. دعا کریں اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں ماننے والا بنا دے. تو یہ قرآن جس وقت آپ میں سن رہے ہیں نا، یہ شفا اور رحمت بنے گا. اور اس کے برعکس، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے، جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اکڑتا ہے اور پیٹ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. اپنے لیے بس یہ دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھنا. ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म में से कुछ कम ही हिस्सा पाया। ए नबी, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें। जरा इमेजिन करें, अल्लाह ताला का जलाल नजर आ रहा है इस आयत में, कि आपको जितना इल्म दिया है दीन का सब छीन लें, जो हमने वही के जरिए आपको अता किया, फिर आप हमारे मुकाबले में कोई हमायती ना पाओगे जो इसे वापस दिला सके। क्या पता चला इल्म का मान ना करना। ये सारा इल्म एक लम्हे में छिन सकता है। आपको दिखाएंगे एक शख्स की वीडियो कि कैसे उसको अल्लाह ने क्या कुछ दिया और फिर क्या कुछ छीन लिया। दुनिया भर को नचाने वाले अपने इशारों पे फलकों को झिपका नहीं सकते। तो ये जो इल्म आपको अब मिल रहा है या कुछ मुझे मिला, इस पे मान ना करें, तकब्बुर ना करें। अल्लाह नबी को कह रहे हैं आपका इल्म छीन लेंगे, तो मेरे आपके पास तो है ही कुछ नहीं। ये जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की रहमत से मिला है। तकब्बुर और बड़ाई वाले सीने में इल्म नहीं ठहरता। हकीकत ये कि इसका फजल तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो, अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करेंगे तो नहीं ला सकते, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो जाए। ये इतना प्यारा कलाम है, इसका कोई मुकाबला कर नहीं सका। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर अक्सर लोग इनकार पर ही जमे रहे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें इनकार से बचा ले। और उन्होंने कहा, हम तेरी बात नहीं मानेंगे जब तक तू हमारे लिए जमीन को फाड़ कर एक चश्मा जारी ना कर दे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा ना हो। फिर मोजज़े, देखिए चलता फिरता मोजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मौजूद था। वही की सूरत में कुरान की इतनी प्यारी आयतें आती थी, लेकिन पता नहीं इनको किन मौजजों की जरूरत थी, शोबदों की जरूरत थी। आज भी लोग दीन के नाम पे शोबदे चाहते हैं, पंप एंड शो, ग्लैमर चाहिए, ये चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। अल्लाह कहते हैं इनको छोड़ दो इनके हाल पे, मुतालबा क्या कर रहे थे। और उन्होंने कहा, हम तेरी बात ना मानेंगे जब तक तू हमारे लिए जमीन को फाड़ कर एक चश्मा जारी ना कर दे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू इसमें से नहरें रवां कर दे, या तू आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है, या अल्लाह और फरिश्तों को रूबरू हमारे सामने ले आए, या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तो आसमान पर चढ़ जाए। क्या अल्लाह के नबी ने कहा था मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ? देखिए कितनी बेतुकी बात है, किसी को आपके यहाँ आओ कुरान सुनो तो आपसे कि ये सब कुछ करके दिखाओ, कोई रब्त भी नहीं बनता। ये बातें बताती हैं कि अंदर हिदायत की तलब नहीं है। और तेरे चढ़ने का भी हम यकीन ना करेंगे जब तक कि तू हमारे ऊपर एक ऐसी तहरीर ना उतार लाए जिसे हम पढ़ें। ए नबी, इनसे कहो, पाक है मेरा परवरदिगार, क्या मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा भी कुछ हूँ? यानी मैंने नहीं कहा कि ये मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो तुम मुझसे ये मुतालबे क्यों करते हो? अगली आयत को हाईलाइट कर ले। हिदायत की पुकार पड़ती है, फिर भी लोग क्यों नहीं मानते? उसका जवाब है, फरमाया, वमे यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद। लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई तो इस पर ईमान लाने से इनको किसी चीज ने नहीं रोका मगर उनके इसी कौल ने के कि अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया। इनसे कहो, अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम जरूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को इनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। ऐ नबी, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह की गवाही काफी है, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और वो सब कुछ देख रहा है। जिसको अल्लाह ने हिदायत दी वही हिदायत पाने वाला है। ऐ अल्लाह हमें भी हिदायत दे दे, और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो इसके सिवाय से लोगों के लिए तो कोई हामी और नासिर नहीं पा सकता। इन लोगों को हम कयामत के रोज ऊंधे मुंह खींच निकालेंगे। हक का मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म था, अब उनको सजा मिलने लगी। अंधे गूंगे और बहरे, इनका ठिकाना जहन्नुम है, जब कभी इसकी आग धीमी होने लगेगी हम इसे और भड़का देंगे। टेम्परेचर कंट्रोल होगा वहां। अस्तग़फिरुल्लाह, ये बदला है इनकी इस हरकत का कि उन्होंने हमारी आयात का इनकार किया और कहा, क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा? क्या इनको ये ना सूझा कि जिस खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया वो इन जैसों को पैदा करने की जरूर कुदरत रखता है। उसने उनके हशर के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है जिसका आना यकीनी है, मगर जालिमों को इसरार है कि वो इसका इनकार ही करेंगे। ऐ नबी, इनसे कहो, अगर कहीं मेरी रहमत के खजाने तुम्हारे कब्जे में होते, यानी यानी बारिश अल्लाह ने अब इनके काबू में दी होती, हवा गवर्नमेंट को दी होती तो क्या होता, तो तुम खर्च हो जाने के अंदेशे से जरूर इनको रोक रखते। वाकई इंसान बड़ा तंग दिल वाकई हुआ है। ये दो चीजों का नाम लिया मैंने, अगर अल्लाह ने इंसानों को ये दो चीजें दी होती ना, बारिश पे टैक्स लग चुका होता, हवाओं पे कोई ना कोई पेनल्टी पड़ चुकी होती। ये जो इंसान आजाद फिजा में सांस ले रहा है ना, तो उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ने ये खजाने अपने हाथ में रखे हुए हैं। यहां से देखिए कि अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत और बंदों की थोड़दिली। हमने मूसा को नौ निशानियां अता की थी, बात कहां से शुरू हुई थी, बनी इसराइल के वाक्य से, आखिर में फिर उनका तस्करा, क्योंकि सूरत का नाम बनी इसराइल है तो उन्हीं की जिंदगी से मिसाल लेकर हमें सिखाया जा रहा है। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को नौ निशानियां अता की थी जो वाजे तौर पर दिखाई दे रही थी। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा इनके हाँ आए तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा, मैं समझता हूँ तू जरूर एक सहरज़दा आदमी है। देखिए फिरौन ने क्या कहा, मस्खूरा, और मूसा के बारे में क्या है, मसबूरा, हलाकत में पड़ने वाला। मूसा ने इसके जवाब में कहा, तो खूब जानता है कि ये बसीरत अफरोज निशानियां जमीन और आसमानों के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की, और मेरा ख्याल है कि फिरौन तू जरूर एक शामत जदा आदमी है। हर दौर में हक बात वालों के सामने लोगों ने इसी किस्म की बातें की। आखिरकार फिरौन ने इरादा कर लिया कि मूसा और बनी इसराइल को जमीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने इसको और इसके साथियों को इकट्ठा गर्क कर दिया। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था। इसके बाद बनी इसराइल से कहा, अब तुम जमीन में बसो, फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है। किसी ने गिना कितनी दफा कुरान का तस्करा इस बारे में और इस सूरत में, और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ। ए नबी, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसको बशारत दे दो। अपने लिए दिल की गहराई से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें मानने वाला बना दे, और फिर हमें वो सारी बशारतें भी मिल जाएं जो नबी सल्लम ने दी, और जो ना माने इसको वॉर्न कर दो, इसको आगाह कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने मौका मौका से बतदरीज उतारा है। ऐ नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या न मानो, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है इन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वो मुंह के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, इसका वादा तो पूरा होना ही था, और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं, और इसे सुनकर इनका खुशू और बढ़ जाता है। कुरान सुन के टूट जाना, ये फितरत की पुकार है। कुरान सुनकर भी दिल सख्त रहे, आंखें खुश्क रहे, कमर अकड़ी रहे, तो याद रखिए कि फिर इससे फायदा नहीं है। ऐ नबी, इनसे कहो, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो इसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं, और अपनी नमाज में ना बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ो और ना बहुत पस्त आवाज से, इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। यहाँ तहज्जुद पढ़ने का अदब सिखाया जा रहा है, ना इतनी ऊंची पढ़ो कि जाग जाएं लोग, और ना इतनी आहिस्ता पढ़ो कि तुम्हें खुद भी नींद आती रहे। और कहो, सूरत शुरू हुई थी सुबहान अल्लाजी असरा, देखिए एंड कहाँ हो रहा है, वकुलिल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ीलम यत्तखिज़ वलदा, और कहो तारीफ है इस खुदा के लिए जिसने न किसी को बेटा बनाया, ना कोई बादशाही में इसका शरीक है, और ना वो आजिज़ है कि कोई इसका मददगार हो, और इसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बड़ाई। क्या पता चला कि तस्बीह और तहमीद और तकबीर, ये तीन चीजें दुनिया में भी इज्जत दिलाती हैं और आखरत में भी इज्जत दिलाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस पूरी सूरत के सारे अहकामात पे अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली सूरत सूरत अल कहफ है, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दूंगी आपको ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको महसूस हो, और हमारे इस पारे के जो आइडियल या रोल मॉडल हैं जिनको इंशाल्लाह हमने फॉलो करना है वो भी अस्हाबे कहफ हैं। तो सूरत कहफ बड़ी खूबसूरत सूरत है, रोशनियां बखेरने वाली सूरत है। नबी सल्लम ने फरमाया कि जो इसको पढ़ेगा एक जुमे को, उसके घर से लेकर अदन तक और मुख्तलिफ मुल्कों तक उसके नूर की बात की गई। बहुत सारी हदीसें हैं, मेरे आपके लिए अमल की सिर्फ इतनी बात है कि हर जुमे को सूरत कहफ पढ़ लिया करें। जुमेरात की असर से लेकर जुमे के सूरज ढलने तक आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इसकी आखिरी 10 आयतों के बारे में आता है कि फितने दज्जाल से महफूज होंगे। आप इस सूरत को सुनते वक्त नोट कीजिएगा, 7 रहमतों का जिक्र है इसमें और हफ्ते के भी 7 ही दिन हैं और हर रहमत एक रहमत का जरिया बन जाएगी। और सूरत कहफ का नाम कुछ शख्सियात के नाम पर है। एक दौर था कि जहाँ इस्लाम पे अमल करना बहुत मुहाल हो गया। कौन सा दौर था उसको छोड़ दें, हम तो अमल के लिए पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो थे उस शहर के, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। यंग बच्चे जो उन्हीं के घरों के थे, एक एक करके इस मकसद ने उनको जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हम इस दौर के गलत कवानीन को नहीं मानेंगे। महल्लात के पले भड़े इन लीड्स घरानों के चश्मो चिराग वो बच्चे थे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय हक का साथ देने के लिए उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। एक निकला, दूसरा निकला, तीनों चारों कहीं मिल के 7-8 जो भी थे सब किसी गार पे जमा हो गए क्योंकि उन्होंने अपना ईमान बचाया था। अल्लाह ने उनकी इतनी कदर की कि ज़मीन, आसमान, गार, सूरज, चांद को उनका मददगार बना दिया। और कैसे उनकी मदद की ये इंशाल्लाह हम इसकी इब्तदाई आयात में तकरीबन 2-2.5 रुकू में ये पढ़ेंगे, जिसमें आपके मेरे लिए इस वक्त अमल की बात यह है कि हक को मानते हुए पूरा यकीन रखें ये हक है, गलत चीज़ को ना माने ना मनवाएं। जब तक मैं और आप हक के लिए स्टैंड नहीं लेंगे दुनिया में हक का गलबा नहीं होगा। दूसरी बात ये सूरह कहफ के पढ़ने के बारे में जो हदीस से मिलती है कि इससे फितनों का बचाव है क्योंकि सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है जो क़यामत के करीब आने वाला है। तो इस सूरत में आपको 4 मुख्तलिफ फितनों की बात मिलेगी, दीन का फितना, माल का फितना, औलाद का फितना और इल्म का फितना, बल्कि 7 आगे लगा लें तो इख्तदार का भी फितना है। हम इसमें अब 4-5 मुख्तलिफ छोटे बड़े वाक़यात पढ़ते जाएंगे जिसके बाद हमें इस बात का यकीन आ जाएगा कि कुरान ही वो किताब है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल के फितनों से बचने का हमें इलाज बताती है। आज का मसला क्या है, जब कोई फितना उठता है तो हम कुरान भी छोड़ देते हैं और उसके ऊपर अमल भी छोड़ देते हैं। और दज्जाल का जो लफ्ज़ है ना, ये दजल से है। दजल कहते हैं धोखे को, घटिया चीज़ आला नज़र आती है, जो मट्टी है उसके ऊपर आप कह लें सोने का पानी फेर के उसको सोने का करते हैं। कह लीजिए कि पूरी दुनिया में जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसका तोड़ सूरत कहफ के अंदर जो वाक़यात हैं उस पे गौर व फिक्र और अमल का है। अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि वो आपको मुझे इस पे गौर व फिक्र करने वाला बना दे और अमल वाला बना दे। आज का हमारा टाइम वेस्टर और टाइम की जो हिफाजत है वो भी देख लीजिए ताकि कुछ करने की आदत अगर पड़ रही है तो पढ़ती रहे। पढ़ रही है कुछ? कितने लोग हैं जो वाकई इन पॉइंट्स को फिर बाद में जाके याद रखते हैं? हैं पर सारे तो नहीं हैं, तो ना दिया करें ये शीट्स, छोड़ दें, हम इसको डिस्कस नहीं करते इधर। तो फिर अमल करें, बहुत मेहनत होती है इन चीज़ों पे, आपको अंदाज़ा है। तो इन सब चीज़ों की कदर करने की ज़रूरत है। हमारी आज के पारे की दुआ रब्बिर हम हुमा कमा रब यानी सगीरा, सब मिलके अपने माँ बाप को जहन में रखते हुए 3 दफ़ा ये दुआ मांगे। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी दुआ सूरत बनी इसराइल की आयत 80, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिदकिन वखरिजनी मुखरज सिदकिन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इसको भी मिलके सब पढ़े ऊंची आवाज से। आज की जो टाइम मैनेजमेंट टिप है, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ रखें जिनसे अल्लाह राजी और खुश हो। कोशिश करके शऊर के साथ अपने कामों को देखें और ऑफ कोर्स फिर नाराज़गी के कामों से खुद को दूर भी करेंगे। और टाइम वेस्टर जल्दबाजी, सोचें फिर बोलें, पहले तोलो फिर बोलो, 10 दफ़ा सोचें फिर काम करें। इससे आपका बहुत सारा फालतू वक्त जो ज़ाया होता था वो बच जाएगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ज़िंदगी में बरकत होगी। और काबिले तकलीद रोल मॉडल शख्सियतें अस्हाबुल कहफ के, कभी बातिल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मानिए मनवाइए और ऐसे हालात पैदा कीजिए कि सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि दूसरे भी लोग उस चीज़ पर जम जाएं। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।